نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا نساء النبي اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو عام عورتوں کی طرح کس طرح نہیں ہے مطلب ہے فضیلت میں مقام میں مرتبے میں کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کو سب کے لیے نمونہ بننا تھا تو تمہارا مرتبہ بہت اونچا ہے بہت بلند ہے اس لیے کہا گیا تم عام عورتوں سے مختلف ہو ان تقیتن اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو یعنی کیا مطلب ہے کہ تم ازواج نبی ہو تمہارا مقام بلند ہے لیکن کس صورت میں کہ تم متقی بن جاؤ تم تقوی اختیار کرو یعنی ان کو بھی کیا حکم ہے حالانکہ ازواج سب پاک دامن عورتیں ایسی بات نہیں کہ ان کے اندر تقوی نہیں تھا پھر بھی ان کو اس کی تاکید ہے متقی بنو اس لیے کیونکہ یہ بات سمجھ لیں یہ اس لیے کہی جا رہی ہے تقوی کی بات بھی کہ آگے جو حکم آ رہا ہے نا اس کو فالو وہی کر سکے گا جس میں تقوی ہو جس میں تقوی نہیں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو آگے بات آنے لگی اور یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ یہ کیا صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ازواج مطہرات سے کسی برے کام کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہ ایسی پاک دامن تھی جن سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا جو اس آیت میں ہے تو پھر کیا جو جن سے توقع رکھی جا سکتی ہے جو اتنی پاک نہیں ہے کیا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا سب کے لیے ہوگا تو ان کو کہا اگر تم نے تقوی اختیار کیا فلا تخدعنا بالقول تو نہ تم نرمی سے بات کرنا کس کے ساتھ نہ نرمی سے بات کرنا یعنی غیر مردوں کے ساتھ فیطمع الذی فی قلبہ مرض تو تما رکھ بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہوگا کوئی بیماری ہوگی وقلنا قولا معروفا اور کہو بات معروف اب چونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے دوسری وجہ کیا ہے اس ہدایت دینے کی کہ وہ ازواج ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ اپنے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کا انٹریکشن مردوں کے ساتھ رہا کرتا تھا ایسی صورت میں یہ بات ضروری تھی کہ ان کے پاس کلیئر انسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ ہم نے مردوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے جب ان سے بات کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی جو آج تک ہماری عورتوں کو تو سمجھ آئی ہی نہیں ہے نا ابھی تک بھی ہمارے یہ کوسچن ہوتے ہیں کہ اچھا اگر مردوں کے ساتھ بات کرنی ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو کس طرح سے کیا جائے گا کیا ان کے ساتھ بالکل ہی بات نہیں کی جا سکتی یا ان کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کی جا سکتی ہے یا کس طرح سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں گائیڈنس دے دی ازواج مطہرات کو یہ حکم دے کر سب عورتوں کو ایک گائیڈ لائن دے دی اور کہہ دیا گیا تم نرمی سے بات نہ کرنا کیوں نہ کرنا نرمی سے بات تخدعنا کا مطلب کیا ہے یعنی تمہاری آواز ایسی نہ ہو جس میں کوئی لچک ہو کوئی لوچدار آواز ہو کوئی ادائیں ہوں کوئی دل فریبی کا انداز ہو کسی کو اٹریکٹ کرنے کا انداز ہو کسی کو دعوت دینے کا انداز ہو کوئی دل پھینک انداز ہو یا ایسا انداز ہو کہ جس سے کوئی دوسرا مطلب سمجھ لے ایسے بات نہ کرنا ورنہ جس کے دل میں گندگی ہوگی مرض ہوگا. اور یہاں پہ کہا اللذی, اللذینا نہیں کہا, سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, مگر ہر مرد بھی ایک جیسا نہیں نہ ہوتا. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے, دل ہی میں ان کی گندگی ہوتی ہے, تو وہ دل میں کوئی تمہ نہ رکھ بیٹھے, اٹریکٹ نہ ہو جائے تمہارے سے. یہاں پہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ نے مردوں سے بات کرتے ہوئے کیسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. آج بھی دیکھیں عورت کا مقام وہی ہے جو جاہلیت میں تھا. عورت کو شہوت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی, آج بھی سمجھا جاتا ہے. آپ عورت کو لباس دیکھیں, سب سے زیادہ ننگا عورت کو کیا جاتا ہے, حالانکہ گرمی دونوں کو لگتی ہے, مردوں کو بھی لگتی ہے عورتوں کو بھی, لیکن عورتوں کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. جو خود عورت ہے, عورت لفظی وہ ہے چھپائی جانے والی چیز, مگر آپ دیکھیں جب عورت کو چھپایا جاتا ہے, عورت چھپاتی ہے اپنے آپ تو آپ کو, تو کس کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, کس کو سر کور کرنے کو پھر بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو, کہ ان کے سر کور کیوں ہیں. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ خواتین کے جسم کے بعض حصے پرومیننٹ ہوں. آپ دیکھیں اسی وجہ سے فیشن ڈیزائنر ایسے فیشن بناتے ہیں, ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ کچھ باڈی پارٹس کو پرومیننٹ کیا جائے. اس کو آج کل ماڈرن سمجھا جاتا ہے, حالانکہ قدیم زمانے سے یہی چیزیں ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جو آپ کے سامنے رکھتی ہوں, جاہلیت میں عورتیں جو تھیں ان کا کیا طریقہ کار تھے, اور پھر آپ کو اور بھی یہ بات سمجھ آئے گی. کہ کہا جاتا ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کی دو نسلیں ایک جگہ پہ آباد تھیں, ایک پہاڑ پہ رہتے تھے اور دوسرے نرم زمین پہ رہتے تھے. جو پہاڑوں پہ رہتے تھے نا لوگ, ان کے مرد جو تھے بہت خوش شکل تھے, بہت ہینڈسم تھے, عورتیں جو تھیں وہ سیاہ فام تھی, اور زمین والوں کی عورتیں بہت پریٹی تھیں, مرد جو تھے ان کے رنگ سانولے تھے. تو شیطان جو تھا وہ انسانی صورت اختیار کر کے ان کو بہکانے کے لیے نرم زمین والوں کے پاس آیا, اور ایک شخص کا غلام بن کے رہنے لگا. پھر اس نے بانسری کی طرح کی ایک چیز بنائی اور اسے بجانے لگا. اس کی آواز پہ لوگ لٹو ہو گئے اور بھیڑ لگنے لگی. ایک دن میلہ کا دن مقرر ہو گیا جس میں ہزاروں مرد عورتیں جمع ہوتے تھے. اتفاقاً ایک دن وہ پہاڑی پہ رہنے والا جو آدمی تھا وہ آ گیا. اس نے ان کی عورتوں کو دیکھا تو واپس جا کے اس نے اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ وہ تو بہت حسین عورتیں ہیں. اب وہ لوگ کثرت سے آنے لگے پہاڑوں پہ جو رہتے تھے. آہستہ آہستہ ان مردوں عورتوں میں اختلاط بڑھ گیا, بدکاری اور زناکاری کا عام رواج ہو گیا. یہ تو جہالت کی باتیں ہیں, جاہل زمانوں کی باتیں ہیں, آج بھی وہی باتیں ہیں. آوازوں کے ذریعے سے اٹریکٹ کرنا, عورت کے ایسی بات چیت کرنا, کیونکہ آواز جو ہوتی ہے نا پہلا انڈیکیٹر ہے کہ جو بتاتا ہے کہ کوئی کیا چاہتا ہے. جب عورت کی بات میں ادائیں ہوں گی, ناز ہوگا, تو مرد بھانپ لیتا ہے کہ یہ کچھ اور چاہتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی پروٹیکشن کے لیے, یعنی دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے, ایک باریک بات ہے نا, لیکن اس میں بھی عورت کی حفاظت کے لیے کہ کوئی عورت ایسا کوئی کام نہ کرے کہ پھر اس کے بعد مثلا اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو اور وہ بدنام ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں نا بعد میں عورتیں کہتی ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتنی ہماری باتیں بن گئی, ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا. اب وہ مرد نے خود ہی غلط میسج لے لیے اور پیچھے لگ گیا, یا اس کو بدنام کر دیا کہ یہ عورت تو میرے پیچھے لگی ہوئی. اس طرح لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں, گھر خراب ہوتے ہیں. اور بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بات کرنے سے ہی. کوئی عورت اگر اپنے گھر سے فرسٹریٹ ہوتی ہے, اس کے کوئی دو ہمدردی کے بول دیتا ہے, وہ اس کے سامنے گر پڑتی. اس سے بھی گھروں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بات کرو, تو سٹریٹ بات کرو, سیدھی بات کرو. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری تو آواز کا پردہ ہے, کہیں لکھا ہوا یہاں پہ کہ بات ہی نہیں کرنی. تم نہ فلا تخدع نہ بالقول, بات کریں گے ہی تو نرمی اور یا سختی کی بات ہوگی نا. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آواز ہی تمہاری نہیں جانی چاہیے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ آواز کو فلٹر کرو. اسلام نے عورت کو عزت دی کہ وہ اپنی عزت से बरकरार रखते हुए ऐसे बात करे कि ये ना हो कि बाद में उसको प्रॉब्लम हो। अल्लाह ताला ने बात करने का भी तरीका हमें सिखा दिया। जिसको अल्लाह का खौफ होगा, तकवा की इसीलिए पहले बात करती, जिसको अल्लाह का खौफ होगा वो इस चीज में केयरफुल रहेगा। यहां पे कह दिया गया औरत की आवाज मर्द को चूंकि अपनी तरफ खींचती है, तो आवाज पाक कर लो। दिल पाक होंगे तो आवाज पाक होगी ना, दिल में तकवा होगा, अल्लाह का डर होगा तो औरत इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी, नर्म लहजे में बात नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि इसका रिजल्ट खराब हो सकता है। ये नहीं कि 100% ही खराब होगा, हर एक आदमी ऐसा है, नहीं, जरूरी नहीं है, मगर हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है। जिसका अखलाक कमजोर होगा, जिसके दिल में बीमारी होगी, यानी गंदगी उसके अपने अंदर ही है, मुनाफकत होगी, तो लहजे की नरमी की वजह से गलत मैसेज ना ले ले, तुम्हारी तरफ मायल ना हो जाए। तो ये बात की तुम्हारी नरमी जो है ना, मर्द के दिल में दाखिल हो सकती है, तमाम उसके दिल में आ जाएगी, लालच पैदा हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा वो। और जैसे मैंने बताया, उम्महातुल मोमिनीन का बार बार मर्दों से राबता होता था, इसलिए कि उन्होंने कई दीन के मसले मसाइल बयान करती थी और कोई पूछने के लिए उनसे आ जाता था, तो उस वक्त में उनको केयरफुल कर दिया गया। हालांकि वो उम्महात हैं, माएं हैं, मोमिनों की माएं हैं, फिर भी उनको ये केयरफुल कर दिया गया। हालांकि उनसे कोई ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की कोई बात होगी, और दूसरी तरफ सहाबा कराम है, लेकिन फिर भी ऐसी बात करने से रोका गया। लेकिन कहीं आप देख रहे हैं कि ये उनको कहा गया कि आज के बाद तुमने किसी से बात नहीं करनी, ये भी तो कहा जा सकता था। तो ये इतनी बड़ी एक गलत फहमी लोगों के अंदर पाई जाती है कि कुछ लोग कहते हैं जी, दो तीन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आवाज का पर्दा, इसलिए कोई मर्द आवाज सुने ही ना। मुझे बताएं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, दीन कोई एक बंदी के लिए नहीं उतरा कि कोई एक उस्ताद है, उस्ताजा है, वो पढ़ा रही है, वो कहे कि मेरी आवाज ना सुनी जाए। चलो वो एक के लिए तो पॉसिबल हो सकता है, पर दीन क्या एक बंदी के लिए उतरा? पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए। उसके अंदर ये पॉसिबल रह ही नहीं सकता कि औरतों की आवाज कोई सुने ही ना। फिर लोग पूछते हैं आवाज का पर्दा है क्या, आपकी आवाज सुनी जा सकती है? तो भाई, बात ये है कि जो हुक्म एक के लिए वही सबके लिए। अगर आवाज का पर्दा है तो वो वही उस्ताद के लिए होगा, वही बाकी औरतों के लिए भी होगा। और चूंकि ये एक गैर फितरी बात है, अननेचुरल है, ये काबिल अमल है ही नहीं, कहीं ना कहीं तो औरत को आवाज सुनानी ही पड़ेगी ना। क्या वो सारी जगह अपने साथ कोई ट्रांसलेटर रखेगी जिसको वो कहती रहेगी? कोई बाप, बेटा, भाई तो उसके साथ होना चाहिए, या हस्बैंड हर टाइम उसके साथ होना चाहिए, जो कोई बात करे, जो कोई फोन उठाए, जो कोई दुकान पे जाए, हर जगह उसके साथ कोई बंदा लगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी एक्सट्रीम क्या लोग कहते हैं कि कोई आवाज हर तरह की, कोई भी आवाज है सारी जायज है, चाहे वो गाने की आवाज है, चाहे वो किसी की आवाज है, अगर कोई चीज बेचनी भी है तो उसमें भी औरत ही खड़ी हो और वो कुछ गा के बताए तो वो है, हर एक आवाज कोई जायज कर दिया। तीसरे एक और ही एक्सट्रीम है, वो कहते हैं बाकी सारी आवाजें तो जायज हैं, दुनिया के मामले में तो हाँ बातें कर लो, लेकिन दीन की बात नहीं, वो नहीं करनी। ये सारी गलत फहमियां दूर हो गई ना। अल्लाह ताला ने बता दिया कि आवाज का पर्दा क्या है, है आवाज का पर्दा, मगर वो क्या है आवाज का पर्दा? वो है कि आवाज को फिल्टर करो। नर्म लहजे का पर्दा है, नर्म लहजे में नहीं बात करनी। अल्लाह ने आवाजों को फिल्टर कर दी, जैसे पानी में अगर केमिकल्स हैं तो क्या करते हैं आप, फिल्टर लगा देते हैं ना, ताकि पानी प्योर हो जाए। ये तो नहीं करते कि पानी पीना ही छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी आवाजों को प्योरीफाई कर दिया। अगर हम ये कहेंगे ये सिर्फ अजवाज के लिए है, तो ये ट्रू नहीं है। इसलिए क्योंकि जब जिनसे मैंने बताया ना, जिनसे तवक्को नहीं रखी जा सकती थी उनको ये हुक्म है, तो बाकी सब के लिए वो रोल मॉडल्स हैं। फिर बाकियों के लिए हुक्म कहाँ है? कहाँ पे वो हुक्म दिया गया कि बाकी सबके लिए आवाज का पर्दा है और इनके लिए नहीं है? कहीं तो वाजे होना चाहिए था ना। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने मर्दों से गुफ्तगू भी की, मसाइल भी समझाए, लेकिन उनके बात करने का जो अंदाज था, एक तो स्ट्रेट बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, हमें ये देखना चाहिए, ये उनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि मसले मसाइल समझाते समझाते ही हंसे और कुछ गप्पियां लग रही हैं और बैठे हुए हैं, नहीं वो नहीं। नरम बात ना करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, बदतमीजियां शुरू कर दें, बदखलाकी शुरू कर दें, लोगों पे चढ़ाइयां शुरू कर दें कि नहीं जी हमने कुरान में पढ़ लिया, अब तो नरम बात करनी ही नहीं है, अब तो बदतमीजी से ही बात करनी है। नहीं, वकुलना कौलम मारूफा, ये चीज बता रही है कि भली बात करो, कायदे के मुताबिक बात करो, नपी तुली बात करो, ना मुंह फटो, ना बदतमीज हो, ना ही ऐसी इंतहाई नरम हो जाओ कि दूसरे फायदा उठा ले। फिर तो रिजर्व भी रह के बात करनी है, फर्म बात करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। लोग कई इसको बहुत ही उल्टा माना ले लेते हैं, जब ये सुनते ना नहीं नरम बात करनी, तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और वो बदतमीजियां शुरू कर देते हैं। और यहां पे देखें, जब ये बात कह दी गई ना, कुल ना कौलम मारूफा, कहो बात भली बात, तो ये मुझे बताएं बात होगी तो भली होगी, बात आवाज के बगैर तो बात होती ही नहीं है, गूंगी भी कोई बात होती है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कहो बात मारूफ बात कहो, भली बात कहो, यानी मारूफ बातें तो आपने करनी है, नेकी की बातें तो आप करोगे ही, सिर्फ लहजा आपने ऐसा इस्तेमाल नहीं करना। फिर कहां से लोग कहते हैं आवाज का तो पर्दा है? ये तो कह रहे कौलम मारूफ है कहो, तो यहां पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। और ये हक किसने औरत को दिया? ये हक औरत ने खुद नहीं लिया, ये अल्लाह का हुक्म है, बोलना कौलम मारूफा का, ये इजाजत अल्लाह ने दी है कि भली बात कहने पे कोई पाबंदी नहीं। हाँ, बुरी बात नहीं कहनी, लहजे पे भी पाबंदी है। अब यहां पे ये भी आप देख लें कि बात भी जो भली बात होगी वो कैसी बात होगी, ये भी आप समझ लें अच्छी तरह, कि ऐसी कोई बात ना हो जिसके अंदर कोई हिडन मैसेजेस हो। आवाज को भी फिल्टर करना है और जो बात कर रहे हैं उसको भी फिल्टर करना है। भली बात ये नहीं है कि बस सारी रात फोनों के ऊपर बातें कर रहे हैं, जी हम तो बहुत अच्छाई की बात ही कर रहे हैं, हमने तो कोई बुरी बात नहीं की, या नेट पे बैठ के चैटिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, वो भी तो बात है, या मैसेजिंग हो रही है, टेक्सटिंग हो रही है तो वो भी क्या है, नहीं जी हम तो भली बात कर रहे हैं। ये तो नापाकी है, ये तो गंदगी है, ये भली बात नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पता नहीं जहन में शायद आपके आ रहा हो कि इस्लाम में मर्द औरत से बात कर सकता भी है कि नहीं कर सकता, तो ये बात समझ लें इस्लाम जरूरत की वजह से बात करने की इजाजत देता है, मगर मारूफ बात करें ना। अब अगर कोई लड़की ये कहने लगे मैंने शादी करनी है, मुझे इजाजत होनी चाहिए मैं लड़कों से बात करूं और पहले उनके इंटरव्यू करूं और ये करूं, तो ये उसको इजाजत नहीं है, उसके वालदैन का काम है, औरत अपना निकाह खुद थोड़ी कर सकती है। तो मारूफ से बात मुराद समझ लें कि लफ्ज भी मारूफ हो और लहजा भी मारूफ हो। अब यहां पे आप खुद देख लें कि फिर इसके बाद कहाँ गुंजाइश रह जाती है कि लोग, यानी आप तो इतना कॉमन है कि अब ये शायद बात भी आपको अजीब लगे, कहीं कजन्स के साथ बैठ के खुशगप्पियां हो रही हैं और उनके साथ बातें की जा रही हैं और पूरी पूरी रात गपशप हो रही है और फिर कह रहे हैं कि नहीं तो हमारे भाई ही हैं, फिर क्या हो गया? जब बात करने का ये बता दिया गया कि बात करनी है कायदे के मुताबिक करो, ये भी नहीं है अब के कोई बात करनी नहीं, बात करनी हराम हो गई, या अगर हमने बात कर ली तो पता नहीं ये बहुत बड़ा गुनाह, वो भी नहीं है बात यहाँ पे। और ये भी नहीं बात है कि आप इतने ही फ्रीडम ले जाओ, ये इंस्ट्रक्शन समझनी बहुत जरूरी है कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से हमने बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है। और जब हमारे यहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, इनमें जाते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है तो क्या हो गया, कोलीग्स ही तो हैं, इनसे बात करने में क्या हर्ज है, तो फिर क्या हो गया, हमारे कोवर्कर्स ही तो हैं, और फिर क्या हो गया, हमारे साथ के क्लास फेलोज ही तो हैं, और फिर क्या हो गया, मेरी सहेली के हस्बैंड ही तो हैं, और फिर क्या हो गया, ये तो हमारे भाई जैसे ही हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने बता दिया आपको, बात करो तो जब जरूरत हो, बात करने में हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारी बात कैसी होनी चाहिए और क्या उसके अंदर लहजा होना चाहिए। अच्छा, आप देखें हमारे माशरे में मुनकर पर तो किसी को इतराज नहीं होता। हाँ, जब सारी तलवारों का रुख इस तरफ हो जाता है कि जिधर कोई खैर की बात हो रही, कहते हैं ये कहां से औरतें तबलीग शुरू करती, पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया, अमर बिल मारू व नहीं अनिल मुनकर शुरू कर दिया, और औरतों पे तो तबलीग फर्ज ही नहीं है, कितनी बातें कही जाती है ना। तो ये क्या कहा है रब्बुल आलमीन ने, ये क्या कहा है, कुलना कौलम मारूफा। और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें दोनों ही आपस में एक दूसरे के रफीक हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, ईमान वाले यही तो काम करेंगे, खुद भी नेक काम करना है, दूसरों को भी इसकी दावत देनी है, दूसरों को भी बुराई से बचाना है, मारूफ बात यही है। और इसमें सिर्फ दीन की बात ही नहीं, कोई दुनिया की भी बात, कोई दुनियावी जरूरत भी हो सकती है, उसके लिए भी मुनासिब तौर पे बात की जा सकती है। तो इस चीज को जहन में रखिए, माएं भी जहन में रखें अपनी बेटियों के लिए, और खुद पहले तो बेटियों के लिए क्या, पहले तो खुद हमें इतनी समझ होनी चाहिए और हमारे घरों का ऐसा माहौल होना चाहिए, तभी आगे बच्चे भी समझेंगे ना इस बात को कि कहां पे हमारी हदूद है। ये नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा लाइट मूड में बात हो रही है, कोई बात नहीं, हम कौन सा कुछ गलत है, हमारे दिल तो साफ ही है ना, हमारे दिल तो पाक ही है, तो कोई बात नहीं है, हम कोई गलत इरादे से तो नहीं बात कर रहे, तो ये तो नहीं कहा जा रहा क्या उम्महातुल मोमिनीन के अल्लाह ताला माफ फरमाए, नऊज़ु बिल्लाह, कोई गलत इरादे थे जो अल्लाह ताला ने उनको इससे मना किया। हाँ, उनको तो इस चीज की जरूरत ही, हमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं, हमारे तो वैसे ही दिल पाक ही है इतने, तो उनके क्या दिल नापाक थे, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इंस्ट्रक्शन उनको दी है और उनके जरिए से सबको, रोल मॉडल को फॉलो करना है ना, रोल मॉडल किसके लिए है, रोल मॉडल हवा में ही रोल मॉडल है। वैसे हम सबसे पूछें तो कहेंगे हाँ आपकी भाई रोल मॉडल किसको होना चाहिए, तो सारे कहेंगे हाँ उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात, इनको रोल मॉडल होना चाहिए, ये हैं इस्लामिक रोल मॉडल्स। लेकिन जब ये आयात आती हैं तो कहते नहीं ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्या हमें कोई खतरा नहीं है, क्या आज कोई तमा रखने वाला आदमी जिसके दिल में बीमारी होती है, क्या गलत बातें कोई नहीं होती, औरतें बदनाम किस तरह होती हैं, जब वो ऐसे अल्फाज या ऐसे लहजों में बात करती हैं जिससे दूसरा गलतफहमी में मुब्तिला हो जाता है, लोग समझने लगते हैं मेरी तरफ मायल हो रही है। और बहुत सारे लोगों को ऐसे बातें करते हुए सुना हो गया होगा, आपने भी सुना होगा कि भाई जैसे बात की और उसके बाद कह दिया कि हाँ ये औरत ना मेरे में इंटरेस्टेड है, हालांकि उस बेचारे को खबर भी ना शायद होगी। और कभी कभी तो औरतें खुद ही सिग्नल देती हैं, तो ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात ना की जाए कि कोई ये कहे कि इस औरत का मेरी तरफ ध्यान है, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जो ना जन्नत में जाएंगे और ना जन्नत की खुशबू पा सकेंगे, खुशबू भी नहीं आएगी इनको जन्नत की। वो कौन लोग हैं, एक तो मर्दों की कैटेगरी से है, मगर दूसरा जो औरतों से मुतल्लिक है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि औरतें वो जो कपड़े पहन के नंगी हों, ठीक है, जो खुद मायल होने वाली और मायल करने वाली खुद भी अट्रैक्ट होती हैं, ऐसे सीन्स देखते हैं, ऐसे मर्दों को देखती हैं कि खुद उनसे अट्रैक्ट होती हैं। औरतें तो इसको बुरा समझती ही नहीं है, खुद अट्रैक्ट होने को। ये किसी मर्द का तस्वीर में जिस्म देखा या कुछ देखा तो उससे अट्रैक्ट होना, ये इसकी बॉडी ऐसी है, इसकी बिल्ट ऐसी है, उससे अट्रैक्ट होने को कोई बुरा ही नहीं समझता। खुद भी मायल होती हैं और दूसरों को भी मायल करती हैं। इनके सर ऊंट की कुहान की तरह उठे हुए हैं, ऊंट की कुहानों की तरह। ऊंट की कुहान कैसी होती है? ऊंट का जो हम्प होता है उसकी तरह उनके सर उठे हुए। तो सर तो खुद नहीं उठ सकता उस तरह ना, कैसे सर औरतों के उठे होते हैं? आपने कोई देखी है ऐसे? जब आप बालों का स्टाइल ऐसा बनाते हैं कि सर पीछे से लगता है कि एक सर के ऊपर एक और कुछ ऊपर रखा हुआ है हम्प की तरह, और उसके ऊपर आप स्कार्फ पहन लें, क्या लगता है? ऊंट को पहले देख लेना उसका हम्प, फिर आपको समझ आ जाएगी बात। तस्वीर में तो कहीं ऊंट देखा ही होगा ना, नहीं भी रियलिटी में देखा तो। तो वो जब औरतें चली आ रही होती हैं तो उनके जूड़े या उनके बाल या पफ बना के या उसको बैक कॉम्बिंग करके इतने ऊंचा किया होता है और उसके ऊपर दुपट्टे को डाला होता है। और इस हालत में याद रखें नमाज भी नहीं होती, नमाज नहीं होती इस हालत में औरत की, कि वो सर के बाल इस तरह उठा के फिर ऊपर स्काफ डाल दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगी ना वो जन्नत की खुशबू पाएगी। खुद सोच लें आप, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाले, चाहे आप अपने ड्रेसिंग से अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने मेकअप से अट्रैक्ट कर रहे हो, और चाहे आप अपनी आवाज से अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपकी आवाजें ऐसी वो हों, ऐसी अदाएं बना बना के बात कर रहे हो, कहीं फोन पे ही इस तरह से बात कर रहे हो, कोई दूसरा देख तो नहीं रहा होता, लेकिन आपकी आवाज से, आपकी मीठी बातों से कोई अट्रैक्ट हो रहा है, जन्नत की खुशबू नहीं पाओगे। कितना केयरफुल रहने की जरूरत है ना इसमें। फिर सूरह नूर में हमने पढ़ा था ना कि अपने जेवरों को, अपने पैरों को जमीन पे ना मारो, कि जो जेवर हैं, जो तुम्हारी जीनत है वो जाहिर ना हो जाए, उनकी खनक से, बजने वाले जेवरों की खनक से, इससे अट्रैक्शन ना पैदा हो जाए दूसरों के दिलों में। तो आवाज भी जब बजने वाली होती है ना, उसमें भी जब ऐसी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, ऐसी शीरीनी होती है, ऐसी मिठास होती है कि दूसरा अट्रैक्ट होने लगे, तो वो आवाज भी जायज नहीं है। और ये अहकाम सबके लिए है। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी कि ये सारी बातें ना औरतों से मुतालिक है, हमें बहुत ज्यादा इस चीज को समझने की जरूरत है। अल्लाह तआला ने हमारी इसमें कुछ, हमें कैद नहीं कर दिया इसमें, हमारी अपने लिए बेहतरी है। अच्छा, अब ये भी आपके जहन में होगा कि औरत का दर्स मर्द सुन सकते हैं, इसमें अल्लाह तआला ने मना तो नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा मर्द है कि वो, उसको लगता है कि उसकी फीलिंग्स इससे कुछ होती हैं, तो फिर वो ना सुने। तो वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और टिकी रहो अपने घरों में, अपने घरों में रहो। अब इसके ऊपर भी बड़ा एतराज किया जाता है, लो जी इस्लाम ने हमें बंद कर दिया घरों में, चादर चार दीवारी और इस तरह और इस तरह, पता नहीं क्या क्या फजूलियत। हालांकि अल्लाह ताला ने कहीं बंद करने का तो जिक्र है ही नहीं है, अपने घरों में ठहरी रहो। औरत का मकाम बताया कि उसका असल मकाम उसका घर है, वो अपने घर में ही सेफ है, क्योंकि घर में रहना भी पर्दे का एक तरीका है ना। एक तो आप पर्दा ऊपर ले लेती है ना, और एक आपका पर्दा क्या है, आपका घर में रहना भी पर्दा है, ठीक है? ये भी पर्दे की एक फॉर्म है, जितनी देर आप घर में रहेंगे पर्दा ही होगा ना। तो टिकी रहो अपने घरों में। अब औरतों को ये बात पसंद नहीं आती, हालांकि अगर आप ठंडे जहन से जरा सोचें, जो चीज कीमती होती है आप उसको कहां पे रखती हैं? आपके जेवर हैं, आपके डायमंड्स हैं, सेफ में रखती हैं, लॉकर्स में रखती हैं, छुपा के रखती हैं ना। औरत भी बड़ी कीमती चीज है, उसकी इज्जत इतनी कीमती है। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने घरों में ठहरो। ये नहीं है, ये नहीं कहा गया कि कभी निकल ही नहीं सकती, कभी ना बाहर निकलना, हमारे बाहर निकलने पे पाबंदी है, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि असल तुम्हारा मकाम जो है वो तुम्हारा घर है। नहीं, कोई भी काम करना, करने के निकली भी तो फौरन फिर वापस घर में, तुम्हारा असल ठिकाना तुम्हारा घर है, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन है। मर्द के लिए घर का सुकून इसमें बनाया अल्लाह ताला ने कि औरत घर में हो। अब सुकून ही घरों से बाहर चला गया तो फिर सुकून मर्द को क्या मिलेगा घर में। अब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम्हारा, तुम जाए करार, तुम्हारी तुम्हारे ठहरने की जगह, तुम्हारे असल मकाम घर है। मसलन है, जैसे आप मसलन देखें घर में आपके डिफरेंट चीजें हैं ना, उनकी हर एक चीज की कोई ना कोई जगह है। आपकी प्लेटों की जगह कहाँ है? किचन में है ना, मगर कभी कभी प्लेटें आपको बेडरूम में भी चली जाती हैं, कभी ड्राइंग रूम में पड़ी होती हैं, कभी डाइनिंग टेबल पे पड़ी होती हैं, तो फिर आप उसके बाद उनको कहाँ रख देते हैं? वापस उसकी जगह पे ना, कि असल इसका ठिकाना ये है। ठीक है, इसी तरह औरत का असल ठिकाना घर है। वो कहीं जरूरत से निकल सकती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई कि कभी निकलेगी नहीं घर, क्योंकि इसमें भी हमारी एक्सट्रीम है। जैसे आवाज की एक्सट्रीम है ना, आवाज का पर्दा है, आवाज नहीं कोई सुने, इसी तरह दूसरी एक्सट्रीम इस चीज में भी लोगों की है कि घर से नहीं निकल सकती। मतलब इतनी हद तक जो लोग कोई दीन को समझा नहीं होता सही तरीके से। हमारे भी नॉर्दर्न एरियाज में मुल्क के एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी कि जहाँ पे ये लोग आ गए जिन्होंने अपने आप को कहा कि हम बड़े दीन वाले हैं और हम शरीयत नाफिज करने आ गए, तो उन्होंने कहा हम तो सर उतार देंगे ऐसी औरतों का जिन्होंने कभी घर से निकली। और बाकायदा उन्होंने उसमें दिखाया कि बाजारों में बैनर लगे हुए कि कोई औरत बाजार में आई तो फिर बस वो महफूज नहीं, फिर उसको हम ये सजा देंगे। कोई कोई औरत बाजार नहीं आ सकती, सब घर में रहेंगे, घर से निकलेगी नहीं, वो कदम नहीं बाहर रख सकती। हालांकि इसके बारे में हदीस तो बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए बाहर, पूरी करने के लिए निकल सकती है औरत, घर से बाहर जा सकती है। मसलन है हज के लिए जा सकती है, उम्रे के लिए जा सकती है, मस्जिद जा सकती है, इसी तरह अजीजों से मुलाकात के लिए जा सकती है, किसी की बीमार पुरसी के लिए जा सकती है। यानी अगर आप देखें ना उम्महातुल मोमिनीन को या सहाबियात की जिंदगियों को, तो हम देखते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज उम्रे के लिए भी गई, वो हम देखते हैं कि वो अपने वालदैन के घरों को भी गई। जैसे आपने सूरह नूर में पढ़ा था ना, हजरत आयशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालदैन के घर पहुंचा दिया, भिजवा दिया, बीमारों की इयादत भी की, रिश्तेदारों से ताजियत भी की, तो ये सब कुछ किया है। गजवात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई, तो अगर वो घर से ही नहीं निकल सकती थी तो फिर वो कैसे गई? ये भी एक नहायत ही उल्टी तरफ जाने वाली बात है, बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम। देखें दीन में जब इस तरह की बेजा आप पाबंदियां लगा देते हैं ना जो अल्लाह ने नहीं लगाई, तो आप दीन को नाकाबिले अमल बना देते हैं लोगों के लिए। लोग कहते हैं इस पे तो हम अमल कर ही नहीं सकते, अमल कैसे करें इसके ऊपर, ये तो हो ही नहीं सकता, जरूरियात तो हैं, घर से निकलना भी पड़ेगा। वो हत्ता कि यहां तक था कि वो औरतें जो थी, टॉयलेट्स तो घर में होते नहीं थे, टॉयलेट के लिए भी बाहर जाया करती थी औरतें मिलके, तो जाती थी कि नहीं जाती थी फिर? तो ये कहां से दीन, नए से नए तरीके बना लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ये दीन है, इस्लाम ये कहता है। फिर औरतों को दीन से नफरत हो जाती है, फिर वो कहती हैं भाई ये दीन हमसे नहीं होता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। औरत को ये कहा गया कि तुम्हारा मकाम घर है, तुम घर में रहो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। मतलब ये कहने का है कि ऐसे ही नहीं कि बेकार बाहर घूमती फिरो, कोई भी जरा सी बात है तो बाहर चले गए, अब हमारा दिल घबरा रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, बेकार बाहर घूमते जा रहे हैं, बेमकसद सैर तफरी होती जा रही है, सिर्फ इसलिए कि बस हमारा घर में दिल नहीं लगता। कुछ औरतें कहती हैं ना मेरे से नहीं घर में बैठा जाता, हम तो बोर हो जाते हैं घर में, जॉब भी इसलिए करती हैं कि बस हमने घर से निकलना है, मैं घर नहीं बैठ सकती, वरना ऐसी उनको कोई जरूरत नहीं होती, मगर बस घर में बैठ ही नहीं पाती, कहती हम नहीं घर में बैठ सकते, साफ मुंह से कहती। आपको तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि आपका असल मकाम ही घर है, कहीं अगर जाती भी हो जरूरत से तो वापस घर ही आओ, वही आपकी असल जगह है, असल ठिकाना है, आप वहीं पे सजती हैं और उसी में आपका पर्दा भी है। लेकिन जहां पे हर चीज उलट हो गई है आज ना, तो औरतों ने भी ये समझ लिया कि हमें भी मर्द बनना है और इसी में हमारी इज्जत है। बल्कि ये कहा जाता है, अरे तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब नहीं करती, तुम बाहर निकलो, जॉब करो बाहर जाके, फिर पढ़ा किस लिए था तुमने। यानी इल्म को भी अफसोस से कहना पड़ता है कि आज पैसों में तोला जाता है। इल्म भी लो इसलिए ताकि तुम फिर जॉब कर सको, जॉब नहीं की तो जाया है। हमारे तो जहनियत ये हो चुकी है ना आज, इल्म बराए इल्म नहीं, इसलिए नहीं कि ताकि जहन खुले, इल्म इसलिए लेना ताकि पैसे और बना सके। जब ये बातें होने लगी तो फिर जाहिर है कोई घर में क्यों ठहरेगा। बल्कि हैरान होते हैं लोग कि अगर तुम्हारे पास कोई डिग्री है और तुम घर बैठी भी हो। घर तो कोई भी ना बैठे, आज वेस्ट ने अपनी औरतों को घरों से निकाला, देखा इनका हाल क्या हो रहा है। अब चाहते भी हैं कि घरों में चली जाए तो जाती नहीं है वो, एक दफा औरत का कदम बाहर निकल जाए फिर वो कहाँ घर में बैठेंगी। आज आप देखें घर वीरान पड़े हैं, ना मर्द घरों में है ना औरतें घरों में। रात को 10 बजे कहते हैं खबरें सुनाने से पहले कि आपको पता है आपके बच्चे कहाँ हैं इस वक्त, 10 बज रहे हैं, सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि जरा देखो तो सही। क्योंकि जब औरत घर में ही नहीं है, ना बच्चों की खबर है, ना अपना कुछ होश रह गया, ना शोहर की कोई खिदमत की बात है, सब अपना अपना करो। और इसको वो कहते हैं शाना बशाना चलना। फिर औरत को अल्लाह औरत ही ना बनाता, सारे ही एक जैसे ही बन जाते, मर्द औरतें सब एक ही हो जाते। अल्लाह ने दोनों के अलग अलग फील्ड्स रखे हैं ना, इसलिए कि एक की जगह घर है और दूसरी की जगह बाहर है। अगर मर्द घर में बैठ जाए तो वो भी नहीं अच्छा लगता, और अगर औरत घर से बाहर रहे हर वक्त तो वो भी नहीं अच्छी लगती। जिनको कोई मजबूरियां ऐसी हैं, कोई ऐसी तंगियां हैं, कोई वाकई ऐसे जेन्युइन रीजन है, नहीं उनके कोई कमाने वाला, तो जाहिर है वो तो उनको मजबूरी है। मगर जो शौकिया ही निकलती फिरे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दी घर में रहो। आप देखते हैं जो औरतें बेचारी बाहर भी जाके जॉब करती हैं, उनके लिए भी कितने मसले मसाइल होते हैं। तो असल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी औरत की उसका घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत तो सारी की सारी पर्दा है, वो तो छुपा के रखी जाने वाली चीज है। जब भी घर से निकलती है शैतान उसके पीछे लग जाता है। और शैतान औरों को भी कहता है ना, फिर इंसानों के भी जेहन में आके बाहर डालता है कि तुम इसकी तरफ देखो। अनस कहते हैं कि औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी या रसूलल्लाह मर्द तो हमसे फजीलत ले गए, वो जिहाद भी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में अपना जान माल लगाते हैं, हमारे लिए ऐसा कोई अमल नहीं है कि हम मुजाहिदीन के अमल को पा सके। आपने फरमाया जो तुम में से अपने घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के अजर को पा लेगी। यानी अपने घरों में ठहरो। बहुत सारा फितना इस वजह से दूर हो जाता है कि जब औरत घर में रहती है, और बड़े फितने पैदा हो जाते हैं जब औरतें घरों से बाहर कदम उठा लेती हैं। और तिरमिजी की रिवायत है कि औरत को पर्दा, औरत तो पर्दा है, फिर जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसको ताकता है, यानी उसकी वजह से लोगों को फितने में डालना चाहता है। जब शैतान उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा लोगों को, तो फिर दूसरे लोगों को भी फितने में डालेगा। और औरत की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि औरत को वैसे ही घर में रहना पसंद होता है। अब ये तो आप फितरत को ही लोग चेंज करने लगे हैं ना, फितरत से उलट जा रहे हैं, तो ये सारी परेशानियां भी हो रही हैं। वरना औरत की फितरत में है घर में रहना, और लड़के जरा से बड़े होते हैं तो आप देखते हैं उनका दिल जाता है बाहर जाने का। तो अल्लाह ताला ने तो बड़े फायदे रखे हैं आपके घर में रहने के। आप एक तो गलत निगाहों से बच जाती हैं, आप सेफ रहती हैं, दूसरी आप माश की मुशक्कतों से बच जाती हैं, आपको कोई जॉब करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला ने आपको इस जिम्मेदारी से ही फारिग किया हुआ है, इसको औरत के लिए फर्ज करार ही नहीं दिया। उसके लिए तो बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत, घरों में रहना, ये इसको रखा गया। बवक्ते जरूरत जाओ, लेकिन उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया कि कैसे जाना है बाहर। अब ये नहीं कहा कि जाना ही नहीं बाहर, अगर जाना ना होता बाहर तो ये अगले हुक्म की जरूरत ही नहीं थी। फरमाया जाओ बाहर, लेकिन वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलियतिल उला, तुम जाओ बाहर लेकिन पहली जिहालत वाली जो जेबो जीनत है उसके साथ ना जाओ। पहले जहालत में क्या हुआ करता था कि औरतें बेपर्द फिरा करती थी, तो इस्लाम ने बेपर्दगी को हराम करार दे दिया। ना सेठ लाठ ला के चला करती थी, दुपट्टे गले में डाल लिया करती थी, जिससे गर्दन के और कानों के जेवर दूसरों को नजर आए। यानी ऐसे दुपट्टे डालती थी कि अगर सर भी पे भी डाला हुआ तो उसको ऐसे पीछे कर लेती थी। जैसे आजकल भी कोई औरतें हिजाब अपने कहती हैं कि हम हिजाब कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा हिजाब है कि गर्दन भी खुली हुई है, कान भी खुले हुए, सारे जेवर नजर आ रहे हैं। ये जहालत का, जाहलियत के दौर का बनाव सिंगार था। तो औरत को बता दिया गया कि तुम बुर्ज ना बनो। मैंने आपको बुर्ज का मतलब बताया ना, बुर्ज जो प्रोमिनेंट चीज होती है, अपने आप को प्रोमिनेंट ना करो। औरत प्रोमिनेंट कैसे करती है अपने आप को? जब वो बनाओ सिंगार करके, जब वो जीबो जीनत करके, जब वो जेवरात पहन के, मेकअप करके, खूबसूरत लिबास पहन के घर से निकलती है, तो अपने आप को बुर्ज बना रही है ना, अपने आप को प्रोमिनेंट कर रही है। जब घर से निकलो तो तबर्रुजुल जाहिलिया ना करो, यानी वो वाला जो बनाओ सिंगार जाहिलियत में औरतें करती थी, बेपर्दगियां करती थी, खुले आम घूमा करती थी। और ये भी कौन करा करती थी, ये भी याद रखें, लौंडियां ऐसे घूमती थी। इस्लाम के बाद तो जो मोमिन औरतें थी वो तो ढकी छुपी हुआ करती थी। खानदानी औरतों की शराफत ही इससे पता चलती थी कि ये खानदानी औरत है, ये शरीफ औरत है। तो ऐसे ना निकलो, ये इस्लाम ने बताया कि ऐसे घरों से ना निकलो कि गैरों को नजारे की दावत दो, कि हर राह चलता जो है ना वो फितने में पड़े, मुड़ मुड़ के देखे कि क्या गजब ढा रही है। ऐसे हुलिये से ना निकलो। और ये बात तुम अपने मुंह से बोल के नहीं कहोगे, बल्कि तुम्हारा हुलिया बोल के बताना चाहिए। हुलिये को तुम्हारे बताना चाहिए कि मैं अपने काम से निकली हूं, मैं किसी की नुमाइश के लिए नहीं निकली, मैं किसी के देखने के लिए नहीं निकली। दरअसल ये एक मैसेज है। आप खुद देखें, जो लोग पर्दा करते हैं शरीयत के मुताबिक, वो खुद देख लेते हैं कि कितनी निगाहें अब उनके ऊपर उठती हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आप कहें कि इस मुल्क में तो और ज्यादा वो देखते हैं। वो देखते कोई अट्रैक्शन से तो नहीं देख रहे होते, हो सकता है उनके लिए एक नई चीज हो इसलिए देख रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन तो नहीं हो रही होती उनको। ये है अट्रैक्शन से देखना, यानी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी नजरें उठती हैं। जब आपका हुलिया ऐसा होता है तो आप एक मैसेज दे रहे होते हैं कि हाँ अब मेरी तरफ देखो, मैं बन संवर के निकली हूं तो देखने की चीज हूं, देखो। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमान औरत को यह भी बता दिया कि तुमने निकलना है तो घर से कैसे निकलना है। अब उस जमाने में भी औरतें निकलती थी, ऐसे नहीं था कि उस जमाने में नहीं औरतें निकलती थी। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी जरूरियात के लिए निकला करती थी, बाजार में भी जाया करती थी। एक मुसलमान औरत थी जो खरीदारी के लिए गई थी, और उसने यहूदियों ने जो बदतमीजी की थी और उसके कपड़े को बांध दिया, उसके चादर के पल्लू को बांध दिया, जब वो उठ के खड़ी हुई ज्वेलर के पास से तो उसका चादर उतर गई और उसने शोर मचाया, बहुत हंगामा हुआ उसके ऊपर। देखें इंशाल्लाह फिर जब इस का जिक्र आएगा तो फिर आपको बताऊंगी आगे चल के। तो इसका मतलब है औरत बाजार भी जाया करती थी। अब बाजार भी आप जा सकती हैं, औरत दीन सीखने के लिए भी आती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसले मसाइल पूछने के लिए जो औरतें आया करती थी। हमने मैंने आपको पिछली दफा मिसाल दी थी सूरह मुजादला की, कि जहाँ पे खौला बिनते सलबा आई थी और उन्होंने आके पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे जिहार की, जहाँ पे आयात आई थी, जिहार की बात आई थी तो जिहार के बारे में पूछा था, तो वो मसले पूछने आती थी ना, तो उनके साथ तो नहीं कोई होता था। और फिर मस्जिद जाने की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, फरमाया कि तुम में से जब किसी की औरत मस्जिद जाने की इजाजत मांगे तो उसको ना रोको। तो इसका मतलब है कि जा सकते हैं आप, इसमें कोई हरज नहीं है, मगर कैसे जाना है ये भी तो देखें, इसके आदाब भी तो जानने जरूरी है, कि जाहलियत के दौर की तरह की सज्जत तो ना दिखाती फिरें। अब खुद सोचें, अगर बाहर निकलने पे पाबंदी होती तो ये हुक्म ही ना आता ना, फिर तो सज धज के निकलना या पर्दे से निकलना उसका तो सवाल ही नहीं था ना, फिर तो सीधा ये कह दिया जाता बस घर से निकलना ही नहीं है। تو یہ آداب ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر نکلیں. اچھا تبرج کے اندر آپ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تبرج میں چار چیزیں آ جاتی ہیں, پانچ چیزیں. تبرج میں سب سے پہلے اپنے جسم کی نمائش, کہ جسم کے جو ایسے حصے ہیں جو خوبصورتی ہیں آپ کی بیوٹیز ہیں ان کی نمائش کرنا, چاہے آپ ٹائٹ کپڑے پہن کے کر رہی ہیں چاہے آپ کس طرح سے بھی جسم کے مختلف حصوں کی نمائش, یا آپ بازو ننگے کر رہی ہیں. اب تو سبحان اللہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسا زینت اور اس کو بھی بناؤ سنگھاری کہا جاتا ہے کہ سر سے دوپٹے تو ویسے ہی اتر گئے, گلے ڈیپ سے ڈیپ ہوتے جا رہے ہیں, ٹانگوں کے اوپر سے کپڑے اور کم ہوتے جا رہے ہیں, بازوؤں کے سے تو بالکل ہی ننگے ہو گئے. تو جسم کے حصوں کو نمائش نہیں کر سکتے. پھر زیورات کی نمائش اور جھنکار. نمبر تھری, پہنے ہوئے جو آپ نے کپڑے ہیں ان کی نمائش. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھیلے پہنے ہوئے ہم نے, تو پھر کیا ہو گیا, ہمارے تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہیں, ہمارے تو سمپل کپڑے ہیں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ, ڈھیلے ڈالے کپڑے کی بات نہیں ہے. جو عورت کے کپڑے ہیں وہ بھی اس کی زینت ہی ہو گئے نا. آپ پھولدار کپڑے پہنتی ہیں, آپ وہ کڑھائیوں والے پہنتی ہیں, ستاروں والے پہنتی ہیں, ساری بیوٹی ہے نا کپڑوں کی. پھر رفتار, آپ کی جو چال ہے چلنے کا انداز ہے, اگر وہ ناز انداز والا ہے, مٹک مٹک کے چلنا, اس طرح سے چلنا, تو یہ بھی ایک تبرج ہے. پھر خوشبو کا استعمال, ایسی خوشبو جو پھیلتی ہو جو غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرے, یہ سب تبرج ہے. تو اس طرح کا تبرج یعنی اظہار نہیں کر سکتی عورت, دکھا نہیں سکتی. اچھا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بعض لوگ حجاب لے کر ہی تبرج کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو حجاب کے ایڈز ہوتے ہیں سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ان تصویروں کو دیکھ کے بندہ اور اٹریکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ نے فل میک اپ کرا ہوا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنایا, تبرج کیا, کیسے تبرج کیا, کہ آنکھوں کو اور پرومیننٹ کر لیا, جب آنکھوں کے اوپر اتنا میک اپ کر دیا, ہونٹوں کا تبرج کیا, اس کو اور زیادہ پرومیننٹ کر دیا لپسٹک لگا کے, پھر اور میک اپ کر کے, پھر آپ نے اور کانوں کو پرومیننٹ کر دیا کہ اس کے اندر زیورات پہن لیے. تو آپ تو تبرج کر ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ولا تبرجنا, نہیں آپ اظہار زینت کر سکتے. سورہ نور میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں, اپنی بیوٹیز کو چھپانا ہے. یہاں پہ بھی یہ بتایا گیا آپ نہیں کر سکتے, ڈسپلے آف بیوٹی از ناٹ الاؤڈ, چاہے لباس ہو چاہے زیور ہو چاہے میک اپ ہو کچھ بھی, یا آپ کا بایا یا سکارف ہی ایسے انداز کا ہو, اتنا زیادہ وہ کام والا اور اتنا زیادہ وہ خوبصورت بنایا اور اتنا زیادہ وہ فٹنگ والا ہو کہ وہی تبرج بن جائے. یہ دیکھنا کہ ہم نے پرومیننٹ نہیں ہونا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے جاہلیت کے اندر عورتیں اپنا سینہ نہیں ڈھکا کرتی تھی, اس کے اوپر کچھ نہیں ڈالتی تھی, یعنی سینے میں جو بھی یعنی اوڑھنیاں آگے نہیں ڈالتی تھی. جیسے آپ نے سورہ نور میں پڑھا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال دو, تو آج تو اول تو ویسے ہی غائب ہی ہو گئی ہیں. اگر کسی نے تکلفن ڈال ہی لی تو وہ بھی گردن میں پھندے کی طرح ڈال لیتے ہیں, جیسے پھندا ڈالا ہوا ہے کسی نے, سینے پہ نہیں آنے دیتے, ضرور اپنی باڈی کے ایسے پارٹس کو نمایاں کرتے ہیں. تو یہ بھی اپنی جو حسن کے محاسن ہیں جو اپنے, ان کو نہ ظاہر نہیں کر سکتے, ان کی نمائش نہیں کر سکتے. مثلاً کمر ایسی فٹنگ والے کپڑے پہننا کہ کمر نمایاں ہو رہی ہے, سینہ نمایاں ہو رہا ہے, کئی ابایا اتنا ٹائٹ پہن لیتے ہیں کہ پھر بھی سینہ نمایاں ہوتا ہے. تو یہ ساری تبرج کی صورتیں. تو اگر آپ بات کو سمجھ لیں گے نا کہ تبرج ہے ظاہر کرنا, ظاہر مت کریں, اور ظاہر کرنا کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تبرج عورت کی زیب و زینت جو وہ اجنبیوں کے سامنے ظاہر کرے, بلند ہو, جیسے برج بلند ہوتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے نا, اسی طرح سے وہ جا رہی ہے تو دور سے پتا چل رہا ہے کہ اچھا فلاں جا رہی ہے, چاہے وہ آپ کی ہیلز ہیں, وہ اتنی آواز کر رہی ہوں کہ آپ برج بن جائیں, और लोगों के दिल मायल होने लगे, लोगों की नजरें उठने लगेंगे कौन औरत जा रही है। तो जब लोगों में खुदा का खौफ नहीं होता ना, तो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को की ब्यूटी को डिस्प्ले करते हैं। इन्हीं के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, वो औरतें जो कपड़े पहन के भी नंगी रहती हैं, क्योंकि लिबास तकवा नहीं है ना, तकवे का लिबास नहीं है। हम कहते हैं ना दिल पाक होने चाहिए, दिल पाक होने चाहिए, बात बिल्कुल आपकी 100% सही है। दिल को तो पाक होना ही चाहिए, दिल पाक होगा तो फिर ही नजर में और फिर ही आपके जिस्म में भी पाकी नजर आने लगेगी, फिर ही तकवा नजर आने। दिल में ही खुदा का खौफ नहीं है ना, तो आपके लिबास में भी खुदा का खौफ नजर नहीं आएगा। देखें जो चीज दिल में होती है वो कैसे नहीं बाहर आएगी। आपके दिल में खुशी है, क्या नजर नहीं आती? चेहरे पे नजर आ जाती है, आपकी चाल में नजर आ जाती है, आपके बोलने में नजर आ जाती है। अगर आपका दिल गमगीन है, नजर आता है कि नहीं आपकी चाल से, आपके चेहरे से, आपके हाल हुलिये से? कैसे हो सकता है आपका दिल इतना पाक है, दिल में तो हमारे बड़ा खुदा का खौफ है, और हमारा दिल ऐसे है, दिल ऐसे, तो दिल में अगर पाकी है तो बाहर क्यों नहीं आ रही, क्यों डिस्प्ले हो रही है जीनत? और ऐसे हिजाब करने का उसका क्या, जिसमें आप और ज्यादा तबर्रुज करने लगे कि हिजाब करके ही कोई इतनी खूबसूरत लगने लगती है कि वो इतना ज्यादा मेकअप कर लेते हैं। तो दिल की दुनिया जब लुटती है ना, दिल में खुदा खौफी नहीं रहती तो जाहिर में भी नजर नहीं आने आती। फिर यही बात हो जाती है, शौहर का तो डर है लेकिन खुदा का डर नहीं है। शौहर की नजर में तो कहती है कि बस मैं सज जाऊं, जच जाऊं, शौहर को खूबसूरत लगूं, इसकी तो इतनी फिक्र है ना, मगर अल्लाह की नजरों में मुझे जचना है इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये दिल की ही तो बातें हैं ना, तो बात शुरू ही दिल से होती है। तो देखिए मैंने आपको जो हदीस बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जहन्नुम में मैंने औरतों को देखा है कि अक्सरियत वहां औरतों की होगी, ये आपको मैंने पहले भी हदीस सुनाई हुई। तो इलामा ज़हबी इस हदीस के बारे में ये कहते हैं कि इसकी एक वजह यह है कि वो अल्लाह रसूल की इताअत कम करती हैं, बहुत कम अल्लाह रसूल की इताअत करती हैं। और कहते हैं कसरत तबर्रुज की वजह से, तबर्रुज यह है कि जब घर से निकले तो बेहतरीन लिबास के इजहार के साथ निकले, जेबो जीनत जाहिर करती भी निकले। अगर वो खुद लोगों के फितने से महफूज भी रहे, खुद नहीं भी अट्रैक्ट होती तो लोग इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये नहीं आप सोचते, आप कहते हैं हम नहीं किसी से अट्रैक्ट हो, तो आप लोगों तो अट्रैक्ट कर रही है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि औरत जो खुशबू की धुनी ले ले फिर वो हमारे साथ नमाज इशा में शामिल ना हो, क्योंकि जिसने धुनी लिया वो घर में ही फिर बैठे, हालांकि वो आपको नजर नहीं आ रही, ऐसी जीनत नहीं है जो नजर आए, फिर भी आपने ये फरमाया। फिर औरतें कह देती हमारे तो शौहर ही नहीं मानते, हम क्या करें? तो क्या शौहर आपकी जगह जहन्नुम में जाने पर राजी हो जाएंगे? पहले उनको इस पे राजी कर लें, इस पे मना लें कि मेरे साथ ही चलना फिर वहां, आज तो वो राजी नहीं होते ना, वहां के लिए फिर राजी कर लें। तो ये तो अहदीस वाजे हैं और ये तो कुरान में पढ़ रही हूं, कोई ये नहीं है कि अपनी तौर पे बातें करें। आपके सामने लिखा हुआ वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अब जो लोग कहें ये उम्महातुल मोमिनीन के लिए, तो हाँ भाई वो तो बहुत खतरे में थी, हम सब तो बहुत महफूज हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। ये मामलात औरतें जानबूझ के समझना नहीं चाहती, क्यों? इसलिए कि ये मामला है जीनत का, और औरत को शौक होता है बनने संवरने का, पर सोती थी कि ये बात ना ही समझी जाए। और हम इसी तरह अपने मतलब के फतवे भी ले लेते हैं कि नहीं जी ये तो इस्लाम में है ही नहीं, जैसे मर्जी रहो, बस हया होनी चाहिए, नजर में हया होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे साफ एक लाइन में कह दिया जा सकता था कि नजर में हया करो, बाकी तुम जिस तरह के मर्जी कपड़े पहन के जाओ, अल्लाह की तरफ से इजाजत है, इसमें कौन सी मुश्किल बात थी? यहाँ पे आके औरत का इम्तिहान हो जाता है, बहुत बड़ा इम्तिहान। अब वो क्या करती है? इस्लाम ने औरत को शो पीस नहीं बनाया कि वो कोई बाजार की चीज नहीं है, कि वो जो जाए वो विंडो शॉपिंग करता हुआ जाता है ना, तो ये कोई शो पीस है कि जो बाहर निकले, जो गुजरा गुजरता है वो उसकी तरफ देखे और अपनी आंखों को लज्जत दे। इस्लाम ने तो औरत को छुपाया, इसी में तुम्हारे लिए इज्जत है। अब कई औरतें कहती हैं कि हम शौहरों के लिए बनती संवरती हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरूर बने संवरे, मगर जब वो उसी हुलिये में घर से बाहर कदम रख लेती हैं, तो अब ये जीनत सिर्फ शौहर के लिए तो नहीं ना रह गई, अब तो ये फ्री फॉर ऑल हो गई, सबके लिए फ्री है, देखना कि वो सब देखें और आंखों से आंखों की लज्जत लें। ये भी याद रखें, तीन लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, एक शराबी है, एक वालदैन का नाफरमान है, और एक दयूस है। दयूस वो मर्द होता है जिसकी औरत गैर मर्दों के दरमियान चले फिरे, उनसे ताल्लुकात रखे, उसको कोई परवाह ही ना हो, बेगैरत मर्द। तो इसलिए बेगैरत मर्द के लिए जन्नत हराम है। तो जो जाहलियत का जौक है ना, वो डिफरेंट है और इस्लामिक जौक डिफरेंट है। ये है इस्लामिक जौक जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अल्लाह तबरजना तबरजुल, जाहलियत में ऐसे किया करते थे, अब थोड़ी, इस्लाम के बाद थोड़ी, इस्लाम के बाद तुम अपने जौक चेंज करो, अपना टेस्ट चेंज करो। हम कहते हैं ये बैकवर्ड बातें हैं, पर्दा जो है ना बैकवर्ड है, यही कहते हैं ना। और लेटेस्ट चीज क्या, नंगा होना है लेटेस्ट चीज। हालांकि आप देखें, अल्लाह ताला ने इसको बैकवर्डनेस कहा, इसको जहालत कहा, जिसको हम मॉडर्निज्म कह रहे हैं, इसको अल्लाह जहालत कह रहा है कि ये तो जहालत की बातें हैं। और आज मॉडर्न अपने आप को वो समझता है जो सब कुछ उतार दे, हालांकि शैतान ने क्या किया था, सुभान अल्लाह, शैतान ने सबसे पहले जो चाल चली थी आदम और हव्वा के ऊपर, सूरह आराफ का आप वो लेक्चर निकाल के देख लें, तो शैतान ने उनका सतर नंगा करना चाहा था। ये तो कहानी सबको ही पता होगी, शैतान ने उनके कपड़े उतरवा दिए थे, नंगा किया था। शैतान का एम क्या है कि इब्ने आदम को नंगा कर दे, और आज हव्वा की बेटी नंगा होने में फखर महसूस करती है, ये तो शैतान के रास्ते हैं। नेक औरतों का ये तरीका कार नहीं है, ये चाल चलन नहीं है। हम नमाज रोजा भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, मैं यहां पे आके टांग टूट जाती है, ये नहीं कर पाते। और आगे इंशाल्लाह ताला और इसके बारे में अहकामात आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रमजान शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि या अल्लाह ये जो चीजें जो हमारे लिए अमल करनी मुश्किल है, अल्लाह ताला इनको हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। तो तबर्रुज के तो नुकसान बहुत सारे हैं, एक तो हया की कमी की दलील है, ये ईमान की कमजोरी की दलील है, रब की रहमत से दूर हो जाता है इंसान, जन्नत उसके लिए हराम हो गई, निफाक की अलामत है, फोहश की अशात हो रही है, अल्लाह की रजा ऐसी औरत को नहीं मिलती, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, साफ है, वाजी है। और अगर लोग इससे बच जाएं, औरतें इससे बच जाएं, कम से कम 50% तो रेप वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर औरतें तबर्रुज से बाज आ जाएं, क्योंकि ये काम भी इसी वजह से होते हैं। औरत औरा है, छुपने की चीज तो वो तो बिल्कुल ही उलट हो गई, हर चीज ही खोल दी। तो अल्लाह ताला ने ये अहकाम दे के फिर फरमाया, अकिम नस्सलात व आती नज़्ज़कात, और नमाज को कायम करो और जकात अदा करो, ये देती रहो जकात, नमाज कायम करो। अब देखिए, हालांकि ये फराइज हैं, फराइज फर्ज है ना, नमाज पढ़ना फर्ज है ना, जकात देना, वातेन अल्लाह व रसूलहू, और फर्ज है ना इताअत अल्लाह और उसके रसूल की, उससे भी पहले अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, इससे पहले हुक्म दिया, फिर क्यों लोग कहते हैं कि नहीं ये फर्ज नहीं है। फर्ज की तो बात बाद में अल्लाह ताला ने फरमाई, उससे पहले ये बात फरमा दी। हम ये अगला हुक्म तो मान लेते हैं, ये पिछले हुक्म को मानने में, जो पहले आया उसको मानने में क्यों हरज है, उसको मानने में क्यों तंगी है, जबकि हमने इतनी आयतें पढ़ भी ली, इतना कुछ पढ़ के भी, फिर उसके बाद भी अगर अब तक हमें नहीं असर होता, तो फिर बताएं वो कौन सी आयतें आएंगी जो हमें समझाएंगी, क्या चीज है जो फिर भी इसमें समझ ना आने वाली हो, कि इंसान कहे कि ये बात मुझे नहीं समझ आई। इस्लाम है ही ये कि सर झुका दे इंसान, सबमिशन, हम सबमिट नहीं करना चाहते हैं। क्या ऐसी बात है कि सिर्फ एक, यानी इस बात को मानना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है, और यही हमारा इम्तिहान हो जाता है, इसको हम कर ही नहीं पाते। اتنی سی چیز کو چھوڑنا اللہ کی خاطر ہمارے لیے مشکل ہے. تو جانے دینا اور اپنے یہ دینا اور اولادوں کی قربانی اور مالوں کی قربانی, یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. اتنی سی چیز اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے. ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا نا. دعوے کرنے بہت آسان ہیں, ہم وہاں پہ ہوتے تو ہم یہ کر دیتے اور ہم وہ کر دیتے. تم تو اللہ کی خاطر تبرج بھی نہیں چھوڑ پا رہے. تو نماز کو قائم کرو, قائم ایسا ماحول بناؤ کہ جو نماز جس میں قائم ہو, جس میں نماز صرف ادا نہیں کرنی, نماز صرف پڑھنی نہیں ہے, اس کو قائم کرنا ہے تمام شرائط کے ساتھ. آتینا زکات, اور زکات دو. عورتیں کہتی ہیں ہم نے زکات کیا دینی ہے, زیور اور اس کی زکات, ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہمارے ہسبینڈ دیتے نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے ہم بھی آرام سے بیٹھے. نہیں, جب آپ کا زیور ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر نہیں دے رہے تو آپ کچھ بیچ کے اس میں سے زکات ادا کیجیے. آپ ذمہ دار ہیں, آپ بری ذمہ نہیں ہو جاتی. اور یہ کوئی مردوں کا کام نہیں ہے صرف, یہ اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آتینا زکات, دو زکات. اب یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ یہ تو ضروری چیزیں ہیں, نماز بھی زکات بھی, ان کو تو ہم کہتے ہیں یہ ستون ہے اسلام کی, اور یہ تو ہم نے کرنے, اور میں نمازی بھی ہوں, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم زکات بھی دیتے ہیں, صدقہ خیرات کر لیتے ہیں, بس یہ بہت ہم بڑے کرنے میں کرتے ہیں. اور اس کو حکم کو جو ہمارا دل نہیں چاہتا, پک اینڈ چوز ہم کرتے ہیں نا. پانچ چیزیں یہاں پہ بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. گھروں میں رہنا, پہلا جیسی زینت نہ کرنا, نماز قائم کرنا, زکات دینا, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. ان میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں, جو ہمارے مرضی آتی ہے, دل چاہتا ہے, اس کو پک کر لیا. نماز زکات چلو کر لیں گے, چلو نام کو اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول کی بھی کر لیں گے, باقی دو ہمیں نہ کہو. یہ نہیں ہم سے ہوتے, یہ نہیں کر سکتے ہم کہ کسی اللہ کے حکم کو, کیونکہ سارے یہ حکم اللہ ہی کے ہیں, ان میں سے ہم کسی حکم کو کم اہمیت اور کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے. اپنے طور پہ کسی کو بڑھا لینا اور کسی کو کم کر دینا, یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. اپنے طور پہ کسی کو تو فرض سمجھ لینا اور کسی کو آپشنل سمجھ لینا, یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب دل کے اندر بیماری ہوتی ہے نا, دل میں کیڑا ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایسے مفتی بھی مل جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں, اس طرح کے فتوے دینے والے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے ہی رہیں تو اچھی ہیں, پھر وہ بھی مل جاتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اپنے دین کو کہاں سے لیں گے, اپنی سیلیبریٹیز سے. ہماری سیلیبریٹیز کون ہیں؟ امہات المومنین. اگر وہ ایسا کرنے والی ہیں تو کون مفتی ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا, پھر ہم فتوے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے, تم سے گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے. گندگی کیا؟ گناہ کو گندگی کہا گیا. گناہ گندگی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ گناہ کی باتیں, بری باتیں, ناپاکی کی باتیں, ان کو دور کرنا چاہتا ہے. اور گندگی کب دور ہوتی ہے؟ جب لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ دور ہو جائے اور زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں, تبھی گندگی دور ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھرانے کو پاک کرنے کا کام شروع کر دیا, یہ احکامات دے کے کہ اس سے پاک ہو جاؤ گے, اے اہل بیت تم اس سے پاک ہو جاؤ گے. کوئی بھی اپنے گھرانے کو پاک کرنا چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اس میں امپلیمنٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں تنگی دینے کے لیے, تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں دیے, بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم ظاہر اور باطن دونوں طرح پاک ہو جاؤ. ظاہر میں کیا ہے؟ آواز ہے, آپ کا گیٹ اپ ہے, آپ کا لباس ہے. باطن میں کیا ہے؟ اللہ سے تعلق, نماز ہے, زکات ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. دونوں طرح سے تم پاک ہو جاؤ, دونوں کے احکامات دے دیے, ان سے انسان پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کرنا چاہا پوری طرح, کیونکہ یہ تمام امت کی عورتوں کی رول ماڈلز ہیں, یہ سب کی مائیں ہیں. ماں اور بچے کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ماں کو دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا. तो ये रोल मॉडल्स हैं, ये हमारी माएं हैं। बेटी माँ को कॉपी करती है, तो रोल मॉडल बेस्ट होना चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये अहकामात खास तौर पे दिए। वयुतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ताला चाहता है कि पाक कर दे तुम्हें, पाक करना, किस चीज से पाक कर दे, हर किस्म की गंदगियों से, दुनिया में भी गुनाहों से पाक कर दे और आखिरत में भी मगफिरत अता फरमा दे। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमति इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। और वज़कुरना, याद करो, बयान करो। जिक्र करने में तीन चीजें आ जाती हैं, खुद भी पढ़ना, उसका चर्चा भी करना, दूसरों तक पहुंचाना भी उसको, इसको बयान यानी एक खुद याद करना है ना, एक जिक्र करना, बयान करना, इनको पहुंचाओ आगे तक। इसमें एक जगह आता है कि इसमें ये भी आ जाता है हिफ्स करना, इसका याद करना इसको, ये सारी चीजें आ गई ना इसमें, कि इसकी तिलावत भी करो, जिक्र करो इनका, इनको आगे तक इनका चर्चा भी करो। चर्चा करना मतलब होता है इनकी पब्लिसिटी करना, यानी जिनको उर्दू में नहीं समझ आ रहा तो इनको आम करो। कैसे होंगी ये आम, लोगों में फैलाओ, जब तबलीग करेंगी तो फैलेंगी ना। ये किसको हुक्म दिया जा रहा है, निसान नबी को। फिर लोग कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है कि जो है औरतें तबलीग करें, कहाँ लिखा हुआ है कि औरतें कुछ सिखाएं, कहाँ लिखा है कि औरतें पढ़ें और पढ़ाएं। तो इसका भी जवाब मिल गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होता कि वो जाके आगे दीन को फैलाएं, खवातीन के लिए भी है। नबी के घराने की खवातीन को अल्लाह ताला ने तैयार किया कि सारी उम्मत के लिए ये मुअल्लिमा का दर्जा भी रखती हैं, और दूसरी औरतों के लिए भी रास्ता खोल दिया कि अल्लाह की आयात आगे बयान करें। और हिकमत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, आपकी सुन्नतें, आपके कलिमात, आपकी बातें, जाहिर है उम्महातुल मोमिनीन जैसे घरों में देखती थी, वो कोई और तो नहीं देख सकता ना, जो मियां बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं, घर का जो टाइम है वो एक बीवी सबसे बेहतर जान सकती है कि मेरा हस्बैंड कैसा टाइम गुजारता है, क्या करता है, तो वो वही डिस्क्राइब कर सकती हैं। तो इस सिलसिले में फिर उन्हीं से सीखना, और उनसे कैसे सीखा जाएगा, जब वो तबलीग करेंगी, फैलाएंगी। और ये भी माना है हिकमत का कि अल्लाह के अहकामात को भी बयान करो और उसकी हिकमतें भी बयान करो। अल्लाह खबीर है, लतीफ और खबीर है, इससे उम्महात का मकाम भी यहां पे हमें पता चलता है, और ये भी पता चलता है अल्लाह ताला ने इनको चूज कर दिए, कर लिया अपनी नबी की बीवियों के लिए, इस जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया है कि वो इस चीज को, इस दीन को लेकर आगे फैलाएंगी। और आप देखें हजरत आयशा, एतराज तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब रही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 48 ईयर तक, हाफ सेंचुरी समझ लें, उन्होंने उम्मत को इल्म सिखाया, एक कसीर तादाद अहादीस की उनसे लोगों तक पहुंची है। दूर दराज से लोग आपके पास इल्म सीखने को आते थे, हज के दिनों में तो लाखों में ये तादाद हो जाया करती थी। हजरत उमर के दौर में ये बड़े बड़े फकीह जो थे उनमें से एक थी, और दूसरी भी उम्महात को देख लें, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, ये हाफिजात थी, कुरान की हाफिजा। और बात सिर्फ हिफ्स की नहीं है, आप इल्मी दर्जा इनका देखें, मसले मसाइल जब सहाबा कराम को होते थे तो वो इनकी तरफ का रुख करते थे कि इनसे जाके पूछे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या तरीका कार हुआ करता था। आयशा के बारे में तो यहां तक आता है कि सहाबा कराम कहते हैं कि जब हमें कहीं और से कोई बात नहीं समझ आती थी तो उनसे जाके पूछा करते थे। ये अपनी गुफ्तगू में ऐसी थी कि बाद सहाबा कहते हैं कि हमने अबू बकर सिद्दीक का खुतबा सुना, हमने उमर का खुतबा सुना, رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مگر جس وضاحت سے عائشہ بات کرتی تھی وہ کسی اور کی بات میں نہیں ہوتی تھی، ایسی وضاحت. یعنی یہ بھی ایک سکھانے کا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے نا، تو یہ مردوں سے بھی آگے نکل چکی تھی، یہ اللہ کا خاص فضل تھا، ان کو یہ صلاحیت ملی تھی. مگر دیکھیں مجھے یہ پڑھ کے نا اتنی میں سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ ڈسکریمنیشن نہیں کیا کرتے تھے. آج اتنی اس دور میں اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہتے ہیں، لیکن اتنی جہالت ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھیں ایشو بنا لیتے ہیں کہ عورت سے کیوں سیکھیں، اس میں تو ہماری بے عزتی ہے، وہ اس قابل کہاں ہے، اس کی کہاں اتنی عقل ہے. لیکن صحابہ کرام مسئلے مسائل پوچھنے میں اس میں کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے تھے. اب بہت ساری احادیث کی راوی حضرت عائشہ کو دیکھیں گے، اور ان کے پاس اتنا علم تھا، پورا شجرا نسب یاد تھا کہ کون کون کس نسل سے ہے عرب میں، اور پھر علم الفرائض کی ماہر تھی، یعنی یہ جو وراثت کے علم ہے نا، اس کے اوپر آج بڑے بڑے علماء کے پاس بھی اتنا عبور نہیں ہوتا، کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنی اس کے اندر ماہر تھی، کتنا کچھ امت کو امہات کے ذریعے پہنچا ہے. اسلام سے پہلے تو عورت کے بارے میں ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، عورت علم حاصل کرے یا تعلیم دے، یہ نہیں تھا. یہ اعزاز اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کرو اس کا ذکر، بتاؤ اس کو، بیان کرو، پڑھ کے سناؤ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اتر رہی ہے، وہی اتر رہی ہے، اس کو آگے بتاؤ، حکمت کی باتوں کو بتاؤ، یہ بہترین کام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اپنے گھروں میں ہنڈی روٹی کرو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین جو بیسٹ عورتیں تھیں ان کے لیے بیسٹ کام چوز کیا. یہ بیسٹ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ازواج کو دیا ہے. معمولی عورتیں تھوڑی تھی، اب ان کا مقام اتنا بلند ہے تو ان کا کام بھی دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آج لوگ عورت کے لیے دین کے پڑھنے پڑھانے کو اتنا برا سمجھتے ہیں، ویسے چاہے وہ سارا دن بازاروں میں پارٹیوں میں گھومتی پھریں، مگر دین سیکھیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے عورتیں سیکھیں، کہاں لکھا ہے عورتیں پڑھنا شروع کر دیں، یہ نئی چیزیں ہیں، کون کہاں لکھا عورتیں پڑھائیں. تو جہاں پہ لکھا ہے آپ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے، سمجھیں تو صحیح. اور یہ وہی لوگ کہہ رہے تھے جن کو خود ہی دین کی سمجھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے یہ کام لیا، ان کو معلمہ بنا کے دکھایا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے کوئی معمولی کام کو چوز نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا آنر ہے. اور انہوں نے واقعی یہ پھر کام کر کے بھی دکھایا. آج ہم نے تو علم سیکھنے سکھانے کو چھوڑ دیا نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کپڑوں میں لگ گئیں عورتیں، زیوروں میں لگ گئیں، سجاوٹوں میں لگ گئیں. اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو ایسی مصروفیت دے دی ہے کہ وہ اس طرف کو اگر آتی ہے تو دیکھیں اس کا سارا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو ایک مقصد مل جاتا ہے، وہ بازاروں کی زینت نہیں بنتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بیکار، دیکھیں ویسے بھی بیکار ذہن شیطان کا گھر ہے، بیکار نہ رہو، عورت کو مصروف کر دیا، کتنی پوزیٹیو مصروفیت دی. اگر عورت ان کاموں میں لگتی ہے تو 80% مسئلے تو عورت کے گھروں کے، عورتوں کے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، ڈپریشن وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں جو مشکل مسائل ہیں آپ کے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. ویسے بھی ایک ماں کو تعلیم دینا، ایک نسل کو تعلیم دینا، تو اللہ نے عورت کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اس کو یہ کام دیا، عورت علم لے اور اس کی زندگی با مقصد ہو جائے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہالت کی زندگی سے نکالا ہے. اگر یہ اتنا غلط کام ہوتا تو پھر امہات المومنین کیوں کر رہی تھی، جو لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں. اور ان عورتوں کے بھی، صحابیات کے بھی، ان کے بھی شوہر تھے، بچے تھے، گھر تھے، جس کو آج کی عورت مجبوری کہتی ہے، تو ان کے بھی تو تھے. لیکن انہوں نے کیسے اس کام کو کیا. اور اکثر لوگ آج یہی سمجھتے ہیں نا، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو نہیں یہ کام کر سکتے، یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، جن کے بچے بڑے ہوں گے ان کا کام ہے. اور کوئی بھی ماں اگر جس کے 2-3 بچے ہیں چھوٹے ہیں، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو یہ کام ہے ہی نہیں، हालांकि अल्लाह ताला ने देखे यहाँ पे इन रोल मॉडल्स को दिखा के सब के लिए एक मिसाल बता दी। उम्महात के तीन बड़े काम थे, वो उम्मत की औरतों को तालीम देती थी, औरतों के सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाती थी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब लेके उन तक पहुंचाती थी, और तीसरी चीज ये कि आपके अकवाल को, आपके अफाल को, आपकी इबादात को, जो भी आपकी घर की जिंदगी थी ना, उसको पूरे इत्तमाम के साथ उसकी तालीम देती थी। और आप देखें अगर हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि मर्दों का ही हाथ नहीं है इल्म सिखाने में, औरतों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और खास तौर पे उम्महातुल मोमिनीन का। अबू मूसा अशरी सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं कोई एक बात ऐसी नहीं कि जिसमें हमें मुश्किल पेश आई हो और आयशा के पास इसका इल्म ना हो, कोई एक बात ऐसी भी नहीं। बड़े बड़े सहाबा कराम हजरत आयशा से पूछा करते थे मसले मसाइल, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इस चीज के ऊपर इतराजात हैं। तो जहालत तो आज फिर ज्यादा हुई ना, उस वक्त तो नहीं थी, आज हुई। इस्लाम ने तो जाहिल रहने को पसंद ही नहीं किया। आज के मर्द चाहते हैं कि उनकी औरतें जाहिल रहें, दीन का इल्म ना लें, और औरतें भी जहालत को पसंद करती हैं। तो इन्ना अल्लाह कहना लतीफन खबीरा, अल्लाह ताला लतीफ है, ये बातें रब ने कही हैं, जो क्या है लतीफ, बारीक बीन भी है, लुत्फ करने वाला भी है, नरम है, मुलायम है, ये बातें बोझ नहीं है। दिल में सख्ती ना लाना कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी डाल दी और हमें ये तो क्या हुक्म दे दिए और हम कैसे करेंगे और ये क्या नहीं, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने पसंद किया, और उसने वो चीज जो तुम्हारे लिए बेहतर है उसी को तुम्हारे लिए पसंद किया होगा, क्योंकि वो खबीर है, वो बाखबर है, उसको मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी है। तो चाहिए तो ये जरूरी कि हर औरत अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ वक्त अपनी जिंदगी में से जरूर निकाले जिसमें अल्लाह की बात को सीखे, उसका इल्म ले, फिर सिखाने वाली बने। उम्महात ने तो खैर डिवोट कर दी थी ना अपनी जिंदगी लोगों को दीन सिखाने के लिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।